श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री शर गोस्वामी गण की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्णा। हाथ जोड़ना अच्छी बात है लेकिन बोलना भी आवश्यक है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का माताओं का हार्दिक स्वागत है इस कथा में, जो कि काफी समय से छह गोस्वामियों का चरित्र के रूप में चल रही है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापनकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कृपान श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी भक्तों का। गुरु वैष्णवों के दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। देखो एक बात हमें समझनी चाहिए कि संसार में मूलतः हम सभी आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। आत्मा का अनुभव उसकी चेतना से होता है और चेतना अलग अलग जीवों में अलग अलग स्तर पर प्रकाशित होती है। चेतना का विकास भगवान की कृपा से क्रमशः होता है। हमने पिछली बार बताया था पांच प्रकार की चेतनाएं, कोई बता सकता है? कौन सी पांच प्रकार की चेतनाएं थी? हाँ, पेड़ वाली, क्या नाम था पेड़ वाली का? हरे कृष्ण। क्या नाम था? तेरे को मिल गया? क्या नाम था पेड़ वाली? याद है अशोक जी? एक बताई थी जो जड़ चेतना प्रायः दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि इनमें जान ही नहीं है, लेकिन जान होती है। वो वृक्ष थे जिनकी चेतना ढकी हुई थी, इसलिए उसका नाम आच्छादित चेतन जीव कहलाया था। क्या नाम था? आच्छादित चेतन जीव। हाँ, उसके बाद आई थी संकुचित चेतन जीव, जो रेंगने वाले कई सारे जीवों में पाया जाता है, जैसे चींटी हो गया, चींटा हो गया, मक्खी, मच्छर आदि। इन सब की चेतना कैसी है? संकुचित चेतन जीव। तीसरा बताया था क्या? बताया था मुकुलित चेतन जीव, जिनकी चेतना थोड़ी सी और अधिक है, वो मुकुलित कहलाता है, जो जानवरों के स्तर पर बताया गया था। उनमें भी परिवार का पालन पोषण करने की वृत्ति पाई जाती है। उससे और अधिक चेतना का विकास किसमें पाया गया? मनुष्यों में। उस चेतना का नाम क्या रखा गया? विकसित चेतन जीव, पूर्ण विकसित नहीं, विकसित चेतन। चेतना का और विकास हुआ तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। आप पूरी तरह से केवल चेतना के स्तर पर ही आ जाए, जड़ता बिल्कुल खत्म ही हो जाए, वो कब संभव होगा? जब चेतना का और विकास किया जाए और उस पूर्ण विकसित चेतन जीव बना दिया जाए। वो आत्मा का स्वभाव है जिसमें जीव पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित चेतन जीव। तो हम ये शरीर नहीं है, आत्मा का विकास हम यहां देख रहे हैं चेतना के स्तर पर। तो दो प्रकार के स्तर की सोच होती है, विशेष रूप से जब हम इस मनुष्य शरीर में आते हैं, जिसमें कि कोई जीव भक्तों की संगति से अपनी चेतना को पूर्ण विकसित कर सकता है, और पूर्ण विकसित करने की मात्र देर है कि वो समझ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। कहने से नहीं, समझने से भी नहीं, वो अनुभूति कर पाएगा इस स्तर, और वो आत्मा के स्तर पर काम करेगा। और जब आत्मा के स्तर पर ऐसा चेतना का विकास अगर नहीं हुआ, तब वो शरीर के स्तर पर काम करेगा। समझ में आया? तो तो शरीर के स्तर पर संसार में कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ भविष्य का सोच के करते हैं। क्या कार्य करते हैं? शरीर के स्तर पर हम सोचते हैं, अरे थोड़े समय में हम बूढ़े हो जाएंगे, सोचते हैं ना। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बुढ़ापा करके घेर ले। उस समय में शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगी तो फिर कैसे जिएंगे? तो उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो केवल पैसा ही इकट्ठा करते हैं क्या ऐसा सोच के, कि कुछ और भी करते हैं? हाँ, भक्ति इकट्ठी करते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पर कौन भक्ति इकट्ठी करता है? कोई नहीं करता। शरीर के स्तर पर जब हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, उस हिसाब से जैसे बताया पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं, भाई बुढ़ापे में काम आएगा। लोग LIC खुलवाते हैं, ये खुलवाते हैं, वो खुलवाते हैं। और क्या सोचते हैं, और क्या करते हैं? बहुत कठिन प्रश्न किए जा रहे हैं क्या? हाँ, बच्चे होने चाहिए जो बुढ़ापे में लकड़ी बनेंगे, उनको बुढ़ापे की लकड़ी कहते हैं, बुढ़ापे के सहारा बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शादी करनी पड़ेगी। तो पत्नी लेकर के आते हैं, उद्देश्य क्या होता है पत्नी लाने का? बच्चे पैदा करना। और फिर बच्चों का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को क्या करते हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं? क्या करते हैं उनको? पढ़ाते लिखाते हैं। क्यों पढ़ाते लिखाते हैं? जिससे वो हमारी लकड़ी बने, हम उसकी लकड़ी ना बने। जिससे वो हमारे बुढ़ापे की लकड़ी बने, सहारा बने, इसलिए करते हैं ना व्यवस्था। तो पूरा जीवन जीने का तीन स्तर पर हम क्रिया करते हैं। पहला तो होता है कि हमारा प्रयोजन क्या है, क्या सोचते हैं हम, हमारा प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन सोचते हैं सारा जीवन कैसे जिएंगे, लास्ट में बुढ़ापे को प्राप्त हो जाएंगे तो कैसे कटेगा जीवन, कौन सहारा बनेगा? तो प्रयोजन क्या है? अच्छा जीवन आनंदमय जाए, यही प्रयोजन है ना। हर समय के कष्ट से कोई सहारा दे, बचाए, वो प्रयोजन है। विशेष रूप से दूर तक का सोचते, बुढ़ापे तक का सोचते, क्योंकि शरीर का दूर उतना ही है, आगे मृत्यु है। तो मृत्यु का तो कोई डर के मारे सोचता ही नहीं कि मरने वाले हम लोग, बूढ़े होंगे इतना जरूर सोच लेते हैं। उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, व्यवस्था करनी है पैसे की, और कोई ना कोई संबंधी ऐसे होने चाहिए जो सहारा बन सके। ऐसा नहीं कि कोई संबंधी है ही नहीं और उसको पैसा दिया वो लेके गायब हो गया। भरोसेमंद आदमी पैसे का उपयोग करता हुआ हमारा सहारा बन। पैसे हैं, बुढ़ापा आ गया, मार्केट तक जा ही नहीं सकते, कुछ खाना पीना बना ही नहीं सकते, तो पैसे का क्या लाभ? कोई तो पैसे का उपयोग करके सेवा करने वाला चाहिए ना। तो ऐसा हम बुढ़ापे तक का सोचते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्रयोजन। इसको क्या कहते हैं? प्रयोजन। इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए हम संसार में किसी मालिक से, स्त्री से, नाते रिश्तेदारों से क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में फिर हम व्यवहार वैसा वैसा करते हैं, निभाते हैं ना उन संबंधों को, उचित व्यवहार करके। पत्नी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, मालिक के साथ अलग व्यवहार करते हैं, नाते रिश्तेदारों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, पड़ोसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, सबके साथ जैसा जैसा संबंध है उसके अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसको व्यवहारिक क्रियाएं कहते हैं, कहते हैं। खाली ऐसा नहीं संबंध बना के खाली बैठ गए, कुछ नहीं करना है, व्यवहारिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी ना, तभी क्या मिलेगा, तभी क्या मिलेगा, प्रयोजन, तभी क्या मिलेगा हमें, प्रयोजन हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो प्रयोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, संबंध, और संबंध के अनुसार व्यवहार। इस व्यवहार को अभिधेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिधेय कहते हैं, और फिर प्रयोजन की प्राप्ति हो जाती। समझ में आया? तो संसार में प्रायः सभी जीव जब विकसित चेतना के स्तर पर होते हैं तो यहां तक सोचते हैं, ठीक। जब हमारी चेतना का विकास पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पर होता है तब हम अपने आप को शरीर अनुभव ना करके अपने आप को क्या अधिक अनुभव करते हैं, कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। जब हम आत्मा अनुभव करते हैं तो आत्मा के स्तर का भी एक प्रयोजन हो जाता है, आत्मा के स्तर का भी एक प्रयोजन हो जाता है। तो आत्मा के स्तर का क्या प्रयोजन है, आत्मा के स्तर का क्या प्रयोजन है, हाँ, भगवान की प्राप्ति। आत्मा के स्तर का प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। आत्मा के स्तर का प्रयोजन क्या होता है, कृष्ण प्रेम। जैसे सुबह हम गाते हैं ना, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। तो ये जो शरीर मिला है, अब जैसे मान लो हमने संतान पैदा की, बच्चा आ गया हमारे पास जीवन में, तो बच्चे का उद्देश्य है ना, हम कुछ पैदा किया था हमने, किस उद्देश्य के लिए पैदा किया था, बुढ़ापे की लकड़ी बनाने के लिए। तब उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि नहीं, अब बच्चे को क्या लग रहा है, पढ़ना लिखना जरूरी है, नहीं। बच्चा सोच रहा है हाथ धो के जब देखो तब तू पढ़ता नहीं, किताब कहाँ है तेरी, थैला किधर है तेरा, क्या पढ़ाई किया तूने, आज टीचर ने क्या बताया, होमवर्क किया कि नहीं किया अभी तक, तुम फोन आ गया था टीचर का तुम होमवर्क नहीं करते, आज स्कूल में गए थे कि नहीं गए थे, कितना हाथ धो के माता पिता पीछे पड़ जाते हैं ना। और ये इतना दुखी होता है जब देखो तब एक ही काम का, घुमा फिरा के बस पढ़ना 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 पढ़ना। अरे थोड़ा खेलने का भी पूछ लिया करो, खेला कि नहीं आज, कभी नहीं पूछते ये लोग, मेरे सुख की तो चिंता ही नहीं इनको, अपने बारे में ही सोचते हैं बस, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। माता पिता ऐसा सोच करके उसके पीछे जो हाथ धो के पड़ जाते हैं, इसमें उस बालक को कुछ भलाई होने वाली है कि नहीं भविष्य में, इस बच्चे को उस पढ़ाई से कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं, उस बच्चे को भी फायदा होने वाला है और माता पिता को भी फायदा होने वाला है। अगर नहीं पढ़ेगा तो माता पिता का भी नुकसान और उसका भी नुकसान। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चे को उस समय समझ में नहीं आता लेकिन जरूरी है। ठीक वैसे ही कोई प्रश्न करे, भगवान ने हमें संकुचित चेतन, आच्छादित चेतन से संकुचित चेतन जीव बनाया, संकुचित चेतन से मुकुलित चेतन में लेकर के आए, मुकुलित चेतन से विकसित चेतन में ये मनुष्य शरीर दिया, अब इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए दिया भगवान ने। जैसे माता पिता ने हमें जन्म दिया तो अपने लाभ के लिए, तो भगवान ने हमें इतने जन्मों से निकाल करके इस मनुष्य शरीर में लाए, हम में से कोई ऐसा पहले से कोई प्रोग्राम जानता था कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा मेरे को, हमारे हाथ में था क्या, नहीं, मनुष्य शरीर पाना हमारे हाथ में नहीं था, वो तो भगवान ने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया, तो किसी पर्पज के लिए दिया होगा ना, तो वो पर्पज भगवान का क्या है? ये विकसित चेतन से जल्दी ही कैसा बन जाए, पूर्ण विकसित बन जाए। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? जब ये भक्त बन जाएगा, जब ये भक्त बन जाएगा तो यहां इसका प्रयोजन क्या है आत्मा के स्तर पर? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। तो जैसे ही इसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, इससे इसको फायदा होगा या भगवान को फायदा होगा? किसको फायदा होगा? तो क्या मूर्ति की तरह बैठे हो यार? अरे पढ़ाई से बच्चे को फायदा हो रहा था, बाप को फायदा हो रहा था, दोनों को ही हो रहा था। ज्यादा किसको होने वाला था? बच्चे को। ऐसे ही भक्ति से भगवान को फायदा होगा या हमें फायदा होगा? दोनों को फायदा होगा, भगवान को भी आनंद मिलेगा और भक्त को भी आनंद मिलेगा। आपसे प्रेम करने वाले एक हो वो अच्छा लगेगा आपको, या दस हो वो अच्छा लगेगा आपको? अनंत हो वो और ज्यादा अच्छा लगे। ऐसे ही भगवान चाहते हैं, ये बेवकूफ आदमी मेरे को छोड़कर के किससे प्रेम कर रहा है? ये सुअर था तब मल से, इस टट्टी से प्रेम करता था, क्या गंदा है जी। मैंने इसको उठा करके मनुष्य शरीर में बनाया, अभी इसको थोड़ा सा जान लगाना है तो ये मेरे से प्रेम कर सकता है, तो ये किससे प्रेम करता हुआ संसार में भटक रहा है? तो कृष्ण को बड़ा दुख लगता है और सोचता है दुनिया मेरे से प्रेम कर रही है, लेकिन ये बेवकूफ नहीं कर रहा है, इसका भी प्रेम मिल जाए तो मेरे को और अच्छा लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई इलेक्शन जीतने जाए, एक वोट से भी इलेक्शन तो जीत ही जाता है, अधिक हो जाए तो उसका, लेकिन फिर भी वो कितने वोट से जीतना चाहता है? वो चाहता है दूसरे को वोट मिले ही नहीं सारी वोट मेरे को ही मिले, और यदि वो योग्य हो तो भी उसको वोट ना मिले तो दूसरा तो बेवकूफ है ना, जो वोट नहीं दे रहा है। ईमानदार होते हुए भी, सारी योग्यताएं धारण करते हुए भी, तो भी ये व्यक्ति इसको वोट नहीं दे रहा, तो इसको तो दुख लगेगा ना, ये दूसरे की ओर कहां भटकता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को बड़ा दुख लगता है कि सबसे बड़ा प्रेम का ऑब्जेक्ट तो मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा दुनिया में और कोई प्रेम की कीमत समझता ही नहीं, और ये मूर्ख लोग उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो प्रेम की कीमत जानते ही नहीं, जो प्रेम नहीं जानते, प्रेम शब्द को ही नहीं जानते, प्रेम करना तो क्या आएगा। मैं इतना प्रेम के ऋणी हो जाता हूं कि कोई मेरे को एक पत्ता भी दे देता है तो भी मैं उसको नहीं भूलता, और संसार में ये उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो आपका सब कुछ ले लेंगे और बाद में मुड़ के भी नहीं देखे। तो भगवान को ऐसे लोगों पर दया आएगी कि नहीं आएगी? ये संसार में जीव क्यों भटक रहे? तो भगवान श्री कृष्ण कोई दुनिया में ऐसा है जो केवल आपको एक थोड़ा सा चुल्लू भर पानी दे और आप उसके हाथों बिक जाए, हमेशा के लिए आप उसके पानी को याद रखें? हम तो खीर खा के भी भूल जाते लोगों को, लेकिन भगवान पानी को भी याद रखते हैं, चावलों को भी याद रखते हैं, चाहे वो सड़े गले ही क्यों नहीं, सुदामा छीन करके ले लेते। तो भगवान सोचते हैं इस मेरे प्रेम के प्रयोजन को छोड़ के संसार में क्यों जीव भटक रहा है, जबकि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, मेरे से ज्यादा ज्ञान में कोई नहीं, मेरे से ज्यादा शक्ति में कोई नहीं, मेरे से ज्यादा वैरागी कोई नहीं, मेरे से ज्यादा धनवान कोई, फिर ये संसार में इधर उधर लोगों के पीछे क्यों चापलूसी करते हुए भटक? तो जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर पर इस भक्ति के द्वारा अपना विकास करता है, चेतना का विकास होता है, पूर्ण विकसित जैसे ही होने लगता है, उसका लक्ष्य अलग हो जाता है। नेचुरली उसका लक्ष्य बन जाता है कि मेरा प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। मेरा प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। उस प्रेम की प्राप्ति करने के लिए, उस प्रयोजन की प्राप्ति करने के लिए, जैसे संसार में हमारा प्रयोजन था पैसा कमाना, बुढ़ापे की लकड़ी का व्यवस्था करना, तो उसके लिए संसार में हमने क्या किया, संबंध जोड़ा, क्या किया, संबंध जोड़ा। तो हमें उस कृष्ण प्रेम को पाने के लिए संबंध जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो संबंध किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, संबंध तत्व क्या है, बोले वो संबंध तत्व है कृष्ण। वो संबंध तत्व क्या है, कृष्ण। समझ में आया। और उस संबंध के अनुसार व्यवहार क्या है, भक्ति। उस संबंध के अनुसार व्यवहार क्या है, भक्ति। क्रिया क्या है, भक्ति। और उस क्रिया का प्रयोजन क्या है, प्रेम। तो तीन चीजें हुई, संबंध क्या हुआ, कृष्ण। संबंध तत्व कौन हुए, कृष्ण। और अभिधेय जिसको क्रिया कहते हैं, जिसको व्यवहार कहते हैं, जो करना पड़ेगा, वो क्या हुआ, भक्ति। और प्रयोजन क्या हुआ, कृष्ण प्रेम। जब हम अपने आप को पुत्र समझते हैं तो संबंध किससे हुआ, स्कूल से। क्रिया क्या हुआ, पढ़ाई। प्रयोजन क्या हुआ, बड़ा आदमी बनना। समझ में आया। लेकिन छोटे बच्चे को पूछो क्या बनना, बोले पता ही नहीं। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के, बोले पता ही नहीं, सोचा ही नहीं अभी। तो किसने सोचा, माँ बाप ने सोचा होगा कुछ क्या बनाना चाहते हो। वो लोग तो हाथ धो के पीछे पड़े हुए। तो ऐसे ही कई बार हमें पूछा जाए, बोले क्या तुम मनुष्य शरीर पा करके क्या प्राप्त करना चाहते हो, बोले पता ही नहीं। मनुष्य शरीर पा करके क्या पाना चाहते हो, किसी से पूछो तो क्या जवाब मिलता है, पता ही नहीं। जब प्रयोजन का ही पता नहीं, जब पता ही नहीं कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर हम पढ़ाई करेंगे, करेंगे ही नहीं। ऐसे जब यही पता नहीं कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो फिर भक्ति करेंगे नहीं, फिर पढ़ाई को लेकर के कौन हाथ धो के पीछे पड़े रहेंगे, माता पिता। तो इधर भक्ति को लेके कौन हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, गुरु वैष्णव शास्त्र जबरदस्त। बैठ इधर, तू कथा में बैठेगा कैसे, नहीं बैठना पड़ेगा, इज्जत का कचरा करेंगे नहीं, बार बार प्रश्न करेंगे, माला जब तू बैठता क्यों नहीं, खेलने में तो बड़ा तेरा मन लगता है, माला तेरी पूरी नहीं होती, दिमाग खराब हो गया तेरा, चल भगवान की सेवा करो उसको, ये केन प्रकार है ना, उसके हाथ धो के पीछे पड़े रहते। और फिर आदमी सोचता है यार भक्ति 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 पागल कर दिया है। लेकिन भैया ये करना पड़ेगा, इसी चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत कृपा करके हमें ये छह गोस्वामियों को प्रदान किया। किसको देने के लिए, इन तीन बातों को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाने के लिए। कौन सी तीन बातें भैया, आप विकसित चेतन जीव की अवस्था में हो, ज्यादा दूर नहीं हो, आप चाहो तो पूर्ण विकसित कर सकते हो अपने आप को, और संसार चक्र को मिटा सकते हो हमेशा के लिए। कैसे मिटाओगे, कृष्ण से नाता जोड़ कर, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। ये किसके द्वारा दिलाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा दिलाया। इसके द्वारा, सनातन गोस्वामी के द्वारा, उन्होंने हमें ये सारी बातें बताया, कृष्ण कौन है, तुम कौन हो, तुम संसार में संबंध शरीर के स्तर पर बना करके बैठे हुए, शरीर के स्तर पर तुम टेंशन ले रहे हो फालतू। जब संसार में आए थे तो क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं। और जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। तो बीच में बोले भक्ति करने क्यों नहीं आ रहे हो मंदिर में? बोले मकान को कौन देखेगा, जमीन का थोड़ा लफड़ा हो गया है, थोड़ा जमीन का लफड़ा सुलझा के आ जाता हूँ। ताऊ जी जमीन हड़पना चाहते हैं, मैं उसे लेना चाहता हूँ, मेरे पिताजी की जमीन है, इसलिए थोड़ा ये काम करके आता हूँ, थोड़ा वो काम कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा वैसा कर लेता हूँ। जबकि संसार में कुछ भी नहीं लाए थे और कुछ लेके भी नहीं जाने वाले, तो बीच में संसारी वस्तुओं के साथ नाता कौन सा जुड़ गया हमारा? और दूसरे लोग भी हमें संसार के नाते को कई बार याद दिला देते हैं, अरे आप यहाँ बाबा जी बन के बैठे हो, तुम्हारी जमीन पे वो कब्जा कर रहा है। अरे भैया तू कब्जा कर रहा है तो कर लेने दे, फिर क्या करना है मेरे को, मैं तो भजन करने के लिए आया था, कृष्ण प्रेम पाना है मेरे को। अरे कृष्ण प्रेम पाना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको बेच के आ जाओ, 3-4 दिन का काम है बस, कौन सा आपको हमेशा के लिए भेज रहे हैं। ये सोचता है नहीं, 3-4 दिन के लिए भी क्यों जाना, 3-4 दिन के बाद पता नहीं माया बड़ी प्रबल है, संसार की संगति करने से मेरा दिमाग घूम गया तो। अरे कुछ नहीं होगा, 3-4 दिन में क्या होगा, आप निकल के तो आए ना संसार से, 3-4 दिन के लिए चले जाओ, पैसा भगवान की सेवा में लगेगा, पैसे से साधु सेवा होगी, इससे भक्ति बढ़ेगी, उसको तो लोग भोगी लोग ही भोग जाएंगे। बोले नहीं मेरे गुरुजी ने ऐसा, अरे गुरुजी ने नहीं बोला तो गुरुजी को थोड़ी समझ है कि इससे पैसे की, पैसे से भगवान की सेवा होगी, तेरे को तो समझ है ना, तो बुद्धिमान है। तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भी वो चला जाता है और वहां जाकर के देखता, अरे हाँ वास्तव में कब्जा कर, और जमीन तो हमारे नाम पर थी और इन लोगों ने पूरी तरह से नकली कागजात बना करके जमीन पर कब्जा कर लिया, इन्होंने तो मेरे को समझा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे यहाँ संबंध है वहां संबंध है, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, चारों तरफ उसने कड़म तिकड़म लगा करके बोले बस अब इनको जेल भेजना ही है। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना बीत गया, बोले अभी जेल नहीं गए, इनको जेल भेज के जाऊंगा। ऐसा होते 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 फिर पूरा जीवन ही जीव का अटक जाता है और हमेशा के लिए संसार में भटक जाता है, जबकि संसार में कोई नाता नहीं था, कोई लेना नहीं देना नहीं। इसलिए कितना बड़ा अंतर है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार में हमें कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, संसार की संपत्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान की सेवा में वापस लाने के लिए लंका तक कैसे चले गए, और वहां पर तो कुसंगति कुसंगति थी, फिर भी भगवान का आदेश था इसलिए चले गए। जब गुरुजनों का आदेश होता है तब हम इन प्रवृत्तियों को अपना सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा इन विषयों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। हम सोचते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाने जाएंगे, लेकिन हम ही उनकी सेवा में चले जाते हैं, भगवान की सेवा छूट जाती है। इसलिए संसार में शारीरिक स्तर पर प्रयोजन को कभी महत्व नहीं देना चाहिए, आत्मा के स्तर पर ही प्रयोजन को महत्व देना चाहिए, और वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव की जो आज्ञा है, साधु जनों की जो आज्ञा है, शास्त्र जो आज्ञा दे रहा है, हमने उसका पालन करना, बस। अगर हम ऐसा पालन करेंगे तो हम संसार में रहते हुए भी बच जाएंगे, और अगर ऐसा पालन नहीं करेंगे तो फिर संसार में हम भगवान की सेवा में दूसरों को लगाने के लिए जाएंगे और खुद ही फंस जाएंगे, निश्चित फंस जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी ने कितना ऊंचा आदर्श रखा भगवान के साथ नाता जोड़ने के लिए कि उन्होंने 7,000 स्वर्ण मुद्राओं को रिश्वत में दे करके जेल से छूटे। उस समय 7,000 स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती होंगी। तो भगवान के साथ आत्मा का नित्य संबंध है, हमने उसको जागृत करना है, उसके लिए सनातन गोस्वामी ने इतना ऊंचा आदर्श रखा कि उनके साथ जब उनका नौकर सात आठ असरफी आठ असरफी आठ स्वर्ण मुद्राओं को जब लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने ईशान नाम के उस नौकर को भी वापस भेज दिया, तुम लायक नहीं हो, अन्यथा सनातन गोस्वामी से बड़ा वैरागी और कौन हो सकता है। वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते थे उन आठ असरपियों से ले जाकर के वृंदावन, वही तो भगवान की सेवा कर सकते आठ स्वर्ण मुद्राओं से। लेकिन जब हमें भगवान के साथ नाता जोड़ना होता है, तो संबंध हमारा ऐसा होना चाहिए कि फिर संसार में किसी और के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के ऊपर हमारी वास्तव में निर्भरता है, या हम समझ रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तभी तो भगवान की शरण में जा रहे हैं ना, फिर हम पैसे को लेकर के संसार में नाता जोड़ के बैठे हुए हैं, अन्य चीजों में लेकर के नाता जोड़ करके बैठे हुए हैं, लोगों के साथ उस प्रकार से डीलिंग कर रहे हैं कि कैसे भी इनके इन प्रकार यहां से पैसा आए, इसका मतलब हमारा महत्व भगवान के साथ नाता नहीं है, हमारा महत्व धन के साथ नाता है। जबकि सनातन गोस्वामी ने एक स्वर्ण मुद्रा रखने पर भी वापस भेज दिया था, चले जाओ तुम लायक नहीं हो इस मार्ग के पथिक बनने के लिए, जबकि कितने समर्पित सेवक थे। ऐसे समर्पित सेवकों को भी उन्होंने वापस भेज दिया। ऐसा अद्भुत संबंध ज्ञान का परिचय सनातन गोस्वामी देते हैं अपने स्वयं जीवन चरित्र से और अपने हरि भक्ति विलास जैसे अद्भुत ग्रंथों के माध्यम से। दूसरी ओर रूप गोस्वामी उस संबंध के अनुरूप व्यवहार कैसा करना चाहिए, अर्थात अभिधेय क्या है, क्या है अभिधेय, भक्ति ही अभिधेय है। अभिधेय क्या है, भक्ति। तो भक्ति का उन्होंने अपने जीवन से विशद वर्णन किया, स्वयं आराधना करके दिखाया और सुंदर सुंदर ग्रंथों को हमें प्रदान किया, जिससे कि हम भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों से सीख सकें कि वास्तव में भक्ति क्या है। आज हम लोग भक्ति करते ही नहीं, करते भी हैं तो ये समझ नहीं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कभी आज तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा भी है तो बस ऊपर ऊपर से मात्र पढ़ा है। तो हमारे जीवन में किसी भी चीज से संबंध नहीं होगा तो ही हम केवल भक्ति को क्रिया में अपना पाएंगे। अगर अन्यत्र हमारे संबंध होंगे तो अन्यत्र क्रियाएं भी हमारे जीवन में आएंगी भक्ति को छोड़ के, समझ रहे हैं? और अन्य क्रियाएं हैं तो अन्य प्रयोजन भी हमें झेलने पड़े। हमारा केवल कृष्ण प्रेम का प्रयोजन नहीं होगा, इसलिए केवल कृष्ण प्रेम का प्रयोजन यदि चाहिए, जैसे कहते हैं ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें कृष्ण जी, हमें श्याम जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें श्याम जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें केवल कृष्ण प्रेम चाहिए। जब कृष्ण प्रेम को लक्ष्य बनाएंगे तो ही हमारा अनन्य संबंध होगा और अनन्य भक्ति होगी और अनन्य प्रेम को हम प्राप्त करें। तो रूप गोस्वामी क्या दे रहे हैं, अनन्य अभिधेय के रूप में भक्ति हमें प्रदान कर। तो हमें कितना रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए, नित्य प्रति अनुशीलन करना चाहिए, लेकिन नित्य प्रति मेरे से अनुशीलन नहीं होता। मैं संसार के अन्य विषयों में संबंध स्थापित करके अन्य विषयों के अनुशीलन में हम लोग लग जाते, फिर कृष्ण प्रेम कितना दूर हो जाए, जबकि कृष्ण प्रेम ज्यादा दूर तो हमारे अंदर ऐसी अगर श्रद्धा होगी तो फिर हमें ये चीजें शीघ्र प्राप्त हो जाएंगी। एक छोटे से बालक को प्राप्त हो जाएंगे अगर ऐसी श्रद्धा होगी तो। श्रद्धा मतलब ऐसा समर्पण होना चाहिए। बोले अश्रद्धया होतम तप्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। गीता में भगवान बता रहे हैं तुम्हारी अश्रद्धा के द्वारा तुम जो कुछ भी करते हो, यज्ञ करते हो, आहुति देते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, कृतम चयत, आप जो कुछ भी करते हो भगवान के लिए, लेकिन उसमें अगर श्रद्धा नहीं है आपको ना तो इस जन्म में फल देगा ना आपको मरने के बाद फल देगा, उसकी कोई कीमत नहीं। कैसे करने पर? अश्रद्धा पूर्वक। कुछ भी करने का कोई फल नहीं मिलेगा यदि हमारे चित्त में क्या है, अश्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? सम्मान से लेकर के समर्पण तक जाती है श्रद्धा। अर्जुन को भगवान ने बहुत बार सहायता किया लेकिन भगवतीता का ज्ञान नहीं दिया कभी भी। भगवतीता का ज्ञान कब दिया अर्जुन को? जब अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया और जिज्ञासा किया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यश्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी प्रपन्नम शरणागति लेता हूं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी जितनी शरणागति होगी उतना ही तुम्हें प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बचपन से ही अर्जुन के भगवान सखा हैं। कई बार पांडवों का भगवान ने साथ दिया। पहले भी भगवतीता का संदेश दे सकते थे लेकिन कभी नहीं दिया। जब अर्जुन ने शरणागति लिया, विनम्रता पूर्वक समर्पित होकर के जिज्ञासा किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या गलत है, तब भगवान ने देखा अच्छा आज इनकी जिज्ञासा है और आज इनका समर्पण है, अब हम इनको ज्ञान देते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता ही नहीं, किसी व्यक्ति का समर्पण है नहीं, आप जबरदस्ती उसको ज्ञान के इंजेक्शन मारो, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्लास में बहुत सारे लोग बैठते हैं लेकिन उद्धार सबका नहीं होता। भौतिक क्लास में भी एक ही टीचर एक ही पुस्तकें लेकिन फिर भी सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? समर्पण नहीं है। जो आज्ञाकारी शिष्य है, जो आज्ञाकारी विद्यार्थी है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। ऐसे ही जब तक हम वास्तव में अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, जब तक हम समर्पित नहीं करते हमारा श्रद्धा का परिचय नहीं प्राप्त होता। श्रद्धा वाले की पहचान क्या है? बोले श्रद्धावान व्यक्ति तत्पर होता है। श्लोक आता है एक, बोले तत्पर संयतेन्द्रिया, याद है किसी को? गीता में भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धावान है बोले वो तत्पर होता है। वो ये नहीं कि उसको कुछ बोलो तो हाँ देख लेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, मतलब श्रद्धा है ही नहीं। फिर आप जो कुछ भी कर रहे हो सब मिट्टी है, कोई फायदा नहीं। बोले ऐसी श्रद्धा कहां से मिलती है? ऐसी श्रद्धा भक्तों की संगति से मिलती है और भगवान की विशेष कृपा से मिलती है। कोई भगवान की शरणागति जिस स्तर पर लेगा, भगवान उसके ऊपर वैसे ही स्तर की कृपा करते हैं। कोई भगवान से चाहेगा, वास्तव में हृदय से चाहेगा, मैं प्रभु इस संसार चक्र से निकलना चाहता हूँ, आपका कृष्ण प्रेम पाना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तो भगवान ऐसी कृपा कर देते। उसको कहते ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता। समस्या ये है कि हम दुनिया को चीट करते हैं तो हमको लगता है भगवान को भी ठग ले, लेकिन हम भगवान को नहीं ठग सकते। भगवान सब जानते हैं कि इसका मेरे प्रति समर्पण कितना है, और उस समर्पण के अनुसार भगवान। तो हमें ऐसी श्रद्धा प्राप्त करनी है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, सबने इस बात को समझाया। रूप गोस्वामी कहते हैं पहले श्रद्धा चाहिए, आदौ श्रद्धा, साधु संघ से पहले ततो साधु संगः, साधु संघ से पहले क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, कथा से पहले श्रद्धा चाहिए, हरि नाम से पहले श्रद्धा चाहिए, कीर्तन से पहले श्रद्धा चाहिए, प्रणाम से पहले श्रद्धा चाहिए। हर क्रिया जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो भोग लगाने से पहले श्रद्धा चाहिए, तो आपका भोग का परिणाम आपको मिलेगा। ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो पहले क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो आपको करने के बाद भी कुछ भी मिलने वाला नहीं। श्रद्धा का अर्थ क्या है, सम्मान चाहिए, सम्मान का अर्थ है आज्ञाकारी, और आज्ञाकारिता इतनी हो जाए कि हम पूरी तरह से सम्मान से बढ़कर समर्पण के स्तर पर चले। ऐसी जब स्थिति होगी तो हमें कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथा भजन क्रिया, आपकी भजन क्रिया से पहले श्रद्धा चाहिए, बहुत पहले श्रद्धा चाहिए। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तब आपके अनर्थों की निवृत्ति होगी। ततो निष्ठा रुचिस्ततः, तब निष्ठा आएगी, उसके बाद आपको रुचि प्राप्त होगी। अथ आसक्ति ततो भाव, उसके बाद भाव आएगा, उसके बाद प्रेम अभ्युदंशति, आपको प्रेम की प्राप्ति। तो रूप गोस्वामी ने इसको विधि पूर्वक भक्ति को दिया, जिससे हम इस प्रयोजन को प्राप्त कर सकते। इस प्रयोजन को अपने जीवन चरित्र से सिखाया श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। इसने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि बंगाल में प्रकट हुए कृष्णपुर नामक स्थान में, इनके पिताजी का नाम गोवर्धन मजुमदार था, इनके चाचा जी का नाम हिरण्य मजुमदार था, दोनों भाइयों के बीच में इकलौती संतान, और ये राजकुमार की तरह इनका वैभव था। आज के समय में सबसे बड़ा कोई अमीर व्यक्ति हो ऐसा समझ लीजिए आप गोवर्धन मजुमदार को उस समय के। इनका वैभव का कृष्णदास कविराज गोस्वामी तुलना करते हैं कि इंद्र के जैसा वैभव था। किसके जैसा वैभव, इंद्र के जैसा वैभव। हम तो सभी ऐसा वैभव चाहते हैं, प्रयोजन बनाते हैं, ऐसा वैभव कब मिलेगा, और इनको हेरिटेज में प्राप्त था, छोटे से बच्चे हैं तब से। संसार में हर व्यक्ति के अंदर संसार की कुसंगति के कारण ये श्रद्धा जो है नष्ट होकर के संसार में चली जाती, जीव संसार की चीजों को प्रयोजन बना लेते। लेकिन इनके ऊपर, इनके कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य और बलराम आचार्य, ये अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, दोनों बड़े प्रेमी भक्त थे, और इनके परिवार में निरंतर भक्ति का सानिध्य देते थे। ये छोटे से बालक थे तब से ही इनको इन दोनों साधुओं का सानिध्य प्राप्त था, जो निरंतर चैतन्य लीला कथा का श्रवण कराते थे। तो श्रद्धा कहाँ से आती है? ऐसी अद्भुत श्रद्धा कहाँ से मिलती है? बोले ऐसी श्रद्धा पहले भक्तों की संगति से ही आती है। बिना भक्तों की संगति के श्रद्धा नहीं मिल सकती। श्रद्धा की दो ही दुकान है, भक्त और भगवान। और कोई दुकान है ही नहीं, कहीं से आप लेकर के आ सकते हैं? उसी समय जब ये छोटे से थे, इनकी मुलाकात इन दोनों साधुओं की कृपा से श्रील हरिदास ठाकुर से हुई। इनसे हुई हरिदास ठाकुर से। चांदपुर एक जगह है, वहां पर हरिदास ठाकुर आए हुए थे। पूर्व में हरिदास ठाकुर बांग्लादेश में रह रहे थे, वहां पर हरिदास ठाकुर का बड़ा अद्भुत प्रभाव फैला था, क्योंकि हरिदास ठाकुर निरंतर भजन करते थे भगवान का। ये प्रेम के आचार्य कहलाए रघुनाथ दास कुछ। कि कृष्ण प्रेम के क्या लक्षण होते हैं इन्होंने सिखाए अपने जीवन से। तो हरिदास ठाकुर से एक व्यक्ति चिढ़ता था इनकी प्रतिष्ठा से, उसका नाम था रामचंद्र खान। उसने एक वेश्या को भेज दिया इनको भटकाने के लिए, इनको अपयश दिलाने के। और ये 22 घंटे भजन करने वाले महात्मा, जब वेश्या आई तो ये 3 दिन तक उस वेश्या को पास में बिठा के बोलते रहे, बैठो इधर भजन करो। देखो संसार में एक अजामिल था जो वेश्या की एक ही दृष्टि से हमेशा हमेशा के लिए भटक गया, जबकि एक एक बहुत ही सज्जन वैष्णव था, एक प्रकार से ब्राह्मण अच्छा व्यक्ति था। लेकिन इधर हरिदास ठाकुर ने 3 दिन तक स्पेशली बिठा के रखा, और 3 दिन तक बिठाने के बाद वो 3 दिन में पूरी तरह से बदल गई, चरणों में गिर पड़ी, उनसे दीक्षा लिया। उन्होंने कहा मुझे पता था तुम्हें रामचंद्र खान ने भेजा है, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ रुका था, अब तुम भजन करो मैं जा रहा हूं। तो जब कोई परिपक्व वैष्णव बनता है तो उस पर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्यथा संसार का प्रभाव अवश्यंभावी है। ये कैसे वैष्णव थे? इनको 22 बाजारों में पीटा गया था। क्या दोष था? कृष्ण नाम लेना। क्या गलती थी? कृष्ण नाम लेना। एक बाजार में 100 कोड़े मारे जाते थे, फिर दूसरे बाजार में ले जाया जाता। आदमी 4-6 कोड़े में ही प्राण त्याग कर दे, लेकिन इनके प्राण नहीं छूटते थे। हमारी स्थिति क्या है? उनको कोड़े मारे जाते थे और कहा जाता तुम कृष्ण नाम मत लो, क्यों ले रहे हो? हमारी स्थिति क्या है? फिर भी ये कृष्ण नाम लेते थे। कैसे ऊंचे स्तर के वैष्णव थे। और हमें अगर मंदिर में कहा जाए कोड़े मार करके तुम कृष्ण नाम नींद क्यों ले रहे हो, तो मंदिर में रहेंगे? हमें तो बढ़िया बढ़िया सुविधाएं दी जाती हैं, और कहा जाता भैया कृष्ण नाम ले लो तो पूछते क्यों लो? ज्यादा ज्यादा माला लटका सकता हूं गले में, लेकिन नाम नहीं जपूंगा। इनको कहा जाता तुम सो जाओ, ये कहते थे नहीं, जब तक मेरा इतना नाम पूरा नहीं होगा तब तक मैं एक पानी की बूंद भी नहीं लूंगा। हमारी स्थिति क्या है? पहले बढ़िया खाने पीने को दे दो, पेट भर जाए, उसके बाद सोचेंगे कि अब कृष्ण नाम लेना है कि नहीं लेना है। कितना हमारा रिवर्सिबल स्थिति है। हम कृष्ण नाम लेकर के क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमको कृष्ण नाम लेने से? पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो कितना ऊंचा स्तर है उनका, इतने महान वैष्णव। हमारी स्थिति क्या है। हम सोचे कि संसार का हम हरिदास ठाकुर की तरह उद्धार करके युक्त वैरागी बनने जा रहे हैं, तो हम क्या युक्त वैरागी बन पाए। वो 22 बाजारों में मारा जा रहा है और वो मर नहीं रहे, तो दुखी हो गए जल्लाद। बोले अगर आप नहीं मरेंगे तो हम मर जाएंगे, हमें नवाब मार डालेगा। तो इनको इतना दुख लगा, ओहो तुम्हें नवाब मार डालेगा। तो बोले फिर हम मर जाते, कोई बात। और इन्होंने प्राण त्याग कर दिए। हम मरा हुआ देख करके सोचा कि ना तो ये हिंदू है ना ये मुसलमान, हमारी दृष्टि में तो इसने मुसलमान परिवार में जन्म लिया लेकिन हिंदू का भगवान का नाम लिया इसने, इसलिए काफिर है ये, इसलिए इसको गाढ़ा नहीं जा सकता, दफनाया नहीं जा सकता। और हिंदू लोगों ने क्या सोचा, ये तो मुसलमान था, इनको कैसे हम अग्नि संस्कार कराए, क्या किया जाए। बोले फेंक दो गंगा जी, गंगा जी में फेंक दिया। अग्नि संस्कार हो सकता है ना, जमीन में गाड़ा जा सकता है, गंगा जी में फेंक दिया। और गंगा जी में बहते बहते किनारे लगे तो अपने आप ही प्राण वापस आ गए और किनारे से उठ करके चल 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 निकल पड़े वहां से, हरि भजन करते हुए। सबने देखा हरिदास ठाकुर फिर से जिंदा हो, सबने इसकी महान इनकी महानता पूछी। तो कितने निपुण वैष्णव हैं, कितने महान वैष्णव हैं। जब ये चांदपुर आए हुए थे उसी समय इनकी नाम की निष्ठा को देख करके यदुनंदन आचार्य और बलराम आचार्य ने रघुनाथ जो छोटे से बालक थे, चलो तुम्हें मिलाने ले चलते एक महात्मा से। और हरिदास ठाकुर का यश सारे संसार में फैलने लगा। हरिदास ठाकुर एक कुटिया में भजन कर रहे हैं, वहां जाकर के बैठे और थोड़ी सी हरि नाम के ऊपर चर्चा हुई। ये छोटे से बालक ने केवल देखा हरिदास ठाकुर को दर्शन मात्र की, और इनका ऐसा भक्ति का प्रभाव, एकमात्र एक बार संगति करने के बाद जैसे ही वापस ये छोटा सा बालक गया घर पे जाकर के, तो रात दिन एक ही काम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अब कोई काम में इसका दूसरा मन ही ना लगे, चलते फिरते रात को सोते जागते उठते बैठते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। कैसा भजन का निष्ठा, एक मीटिंग में ही इतनी ऊंची श्रद्धा आ गई। ये भक्तों की संगति का फल। थोड़े से बड़े हुए उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। चैतन्य कथा सुनते ही थे, चैतन्य महाप्रभु को चीटिंग करके नित्यानंद प्रभु वापस शांतिपुर ले आए थे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के प्रेम में पागल थे, दिखाते दिखाते देखो देखो महाप्रभु यही पहाड़ है ना, ये गिरिराज पर्वत यही है। बोले ये यमुना है, चलो चलो यही पास में। महाप्रभु प्रेम में पागल होते चले आ, बाद में देखा ये तो नारियल के वृक्ष है, वृंदावन में नारियल के वृक्ष कहाँ है, वो कदम के वृक्ष है, वहां तो तमाल के वृक्ष है। महाप्रभु ने देखा ये तो नारियल के वृक्ष है। और महाप्रभु ने जब ये देखा, नित्यानंद प्रभु चीटिंग करके लेके आ गया, अचानक से अद्वैत आचार्य से मुलाकात कराया। अद्वैत आचार्य ने प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु गायब हो गए पीछे से। बोले अद्वैत आचार्य बोले हाँ मैं हूं। बोले हम तो वृंदावन आ रहे थे। बोले नहीं आप तो शांतिपुर आ गए। बोले शांतिपुर में आ गया नित्यानंद, मेरे को शांतिपुर लेकर के आ गया, ठगाई करके चीटिंग करके पीछे देगा तो नित्यानंद प्रभु गायब हो गए। बोले अब अपने ऊपर गाज गिरने वाली है इसलिए पास में ही मत रहो। सारे वैष्णवों के प्राणों में प्राण वापस लौटे, सब चैतन्य महाप्रभु से बड़ा प्रेम कर। और उस समय यदुनंदन आचार्य अद्वैत आचार्य के पास इस रघुनाथ बालक को लेकर के आए और 10 दिन तक सची माता के साथ में रहते हुए इन लोगों ने महाप्रभु की सेवा किया। अब तो 10 दिन के अंदर ऐसा प्रेम उमड़ा चैतन्य महाप्रभु का, इधर से हरि नाम का प्रेम और इधर से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम, वापस चले गए। वापस जाकर के अब तो चैतन्य लीला में ही मग्न होने लगा। अब तो पागल हो गए, छोटी सी अवस्था में ही मेरे को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बनना, मेरे को संसार छोड़ना है। अब तो रोज सुबह सुबह उठकर के घर से निकल करके बाहर निकल पड़े चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनने के लिए, साधु बनने के लिए। बोले मेरे को पूरी जाना, महाप्रभु पुरी में चले गए। सब घर वाले परेशान हो गए, देखो कैसा कितना श्रद्धा का ऊंचा स्तर बढ़ जाता है। इंद्र के जैसा वैभव उनको पसंद नहीं। प्राय ऐसा होता है संसार में, घर वाले भी कई बार हरे कृष्णा के भक्तों को देखते हैं, कोई उनका बालक भक्तों की संगति में आ जाता है, वापस जाता है तो देखते हैं ये तो माला लेके घूमता रहता है रात दिन। माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, कहीं ये साधु न बन जाए हरे कृष्ण वालों का। माता पिता के पास एक तीर होता है, जल्दी से क्या किया जाए, इसका शादी कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी को लेकर के भी यही सोचने लगे, भाई इसको बांधो जल्दी से, इसका प्रेम चैतन्य में जो हो गया वहां से बट करके इधर आ जाएगा तो यहाँ किसी में अटक जाएगा तो फिर ये निकल नहीं पाएगा, अन्यथा इसको रोक पाना बहुत। उन्होंने बहुत सुंदर शीलवती कन्या से, जो कि अप्सरा की तरह सुंदर थी, उसके साथ उन्होंने विवाह कर दिया। लेकिन यहाँ इतना परिपक्व प्रेम था कि वो उनकी ओर देखते भी नहीं थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की विशेषता। अन्यथा बहुत सारे भक्त लोग तो के हाँ घर पे जाते हैं, बोले बस ऐसे ही जा रहे हैं, घर वाले शादी कर देते फिर मुड़ के भी नहीं आते, सालों बीत जाते, हमेशा के लिए बन जाते हैं। उनका प्रेम का व्यापारी दूसरा चालू हो जाता, फिर सब भूल जाते हैं क्या महामंत्र था, कौन सी पुस्तकें थी, क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था, सब उनका चौपट हो जाता है। लेकिन ये फिर भी भागते हैं रोज। अब इनको 11-11 गार्ड्स लगाने पड़े इनके पिताजी को, रोज पकड़ करके लेके आते थे, रोज भाग जाते थे, रोज पकड़ के लाते थे, रोज भागने का प्रयास करते थे, रोज पकड़ के लाते। ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में परिवर्तन आया। आगे चल करके क्या होता है ये लीला थोड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी को कल भी बताएंगे, आज थोड़ा समय अधिक हो गया है। तो हमें अपने जीवन में ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका एक ही प्रयोजन है कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये तभी मिलेगा जब संसार का प्रेम ढीला पड़ेगा और भक्तों के साथ भगवान के साथ समर्पण हमारा आगे बढ़े। इसमें हमारी ही भलाई है, इसमें हमारा घाटा कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भक्त लोग श्रवण कर लें उन सबका आभार और धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मैंने मीटिंग लीव कर दिया यहाँ से, आप भी वहां से कर सकते।